नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका अजीज प्रशांत मिश्रा तैयार है आप सभी को सैर कराने के लिए कहानी चौक की। कहानी चौक जहां पर रोज आप मिलेंगे एक से एक बेहतरीन कहानियों से। और ब्रेक के बाद आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, मेरे हाथ में छाया अग्रवाल जी की लिखी कहानी संग्रह तृष्णा है। और शुरुआत में इसकी टाइटल कहानी के साथ ही करने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं कहानी।
मां, हम कहां जा रहे हैं?
नन्हे दीपू का मासूम स्वर जब नीता के कानों में पड़ा तो उसकी आंखें छलछला पड़ी, गला रुंध गया। पलटकर दीपू को देखा, झट से उठाकर सीने से लगा लिया। बंद आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे और मां का वात्सल्य ममता को बाहों में भींचकर आत्मिक सुख से आश्वस्त हो चला था। नीता ने खाली कमरे को देखा, उसमें कपड़े, जूते, खिलौने कुछ भी नहीं थे। सब कुछ बैग में पैक हो चुका था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से ही किया था। उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसने दीपू को कसकर गले से लिपटा लिया, कभी उसके गालों को, कभी उसके माथे को, कभी उसके सिर को चूमने लगी। दिल की धड़कन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बस एक ही प्रश्न था जो वह खुद से कर रही थी, आखिर कौन से गुनाह की सजा दे रहे हो प्रभु? पहले तो कलेजे में ममता भरते हो, फिर खड़े हो जाते हो यह कहने कि पत्थर का कर लो इसे। प्रभु, मैं तेरे हाथों की कठपुतली नहीं हूं। आज मेरी डोर को तू मेरे हाथों में रहने दे, जी लेने दे मुझे। नीता भरभराई सी सोफे पर धस गई और 6 साल पुराने उस वक्त को याद करने लगी, जब खुशियों ने उसके जीवन में पैर पसारे थे। कितने सुखद थे वह पल जो वो काव्या को ब्याह कर घर लाई थी। काव्या, उसकी प्यारी सी देवरानी, जो बड़ी ही सुशील समझदार थी। नीता अपना सारा प्यार उस पर उड़ेलती थी। बड़ा प्यार था दोनों देवरानी जेठानी में, सारे सुख दुख एक दूसरे से साझा करती। अटूट और सच्ची दोस्ती का रिश्ता था उन दोनों के बीच। अभी देवर जी और काव्या के विवाह को 4 महीने ही हुए थे। आज नीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी अभी काव्या ने उसके कान में आकर कहा, दीदी, मैं मां बनने वाली हूं। नीता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इतना खुश थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। वह काव्या को देख रही थी। काव्या ने आगे कहा, और दीदी, आप बड़ी मां। नीता के लिए खुशी को सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसकी 15 साल की तपस्या आज पूरी हो रही थी, इसका विश्वास उसे नहीं हो रहा था। उसने काव्या के दोनों कंधों को पकड़कर डबडबाई आंखों से पूछा, काव्या, ये सच है क्या?
हां दीदी, ये बिल्कुल सच है।
काव्या ने नीता की आंसू भरी आंखों को अपने हाथ से पोछा और दोनों कसकर एक दूसरे के गले लग गई थी। पूरे 9 महीने नीता ने काव्या का ध्यान एक छोटे बच्चे की तरह रखा, खाना, फल, दवाई, टेस्टिंग, सब कुछ। नीता काव्या को पलंग से उतरने ही नहीं देती, बस उतना ही जितना जरूरी है। उसने एक काला धागा भी काव्या की बाहों में बांध दिया था।
ताकि वह बुरी नजर से बची रहे। समय करीब आ गया। बरसों की सूखी नदी में ममता का पानी छलछलाने लगा। काव्या लेबर रूम में थी। नर्स ने बाहर आकर खबर दी, बेटा हुआ है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नीता जो सुबह से बाहर खड़ी थी सब्र ना कर सकी और अंदर दौड़ पड़ी। फिर अचानक ठिठक गई, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूं? मेरी परछाई बच्चे के लिए शुभ नहीं होगी और यह मैं हरगिज नहीं चाहती। तभी नर्स नन्हे मुन्ने को लेकर बाहर आई और पूछने लगी, आप में से नीता कौन है? नीता तेजी से आगे बढ़ी, खुशी की हड़बड़ाहट और धड़कता दिल रूंधे गले से हां में सिर हिलाया तो नर्स ने बच्चे को उसके गोद में देते हुए कहा, पेशेंट ने इसको आपको देने को कहा है। नीता कुछ समझ ना सकी, बस कभी बच्चे को देखती कभी अपनी सूनी गोद को, और फिर वह अचानक चीख पड़ी, मैं पांच नहीं हूं, कौन कहता है कि मैं मां नहीं बन सकती? देखो देखो देखो, मैं मां बन चुकी हूं, मैं मां बन चुकी हूं। वह खुशी से पागल हो गई। नीता के प्रेम की नदी बहने लगी, छातियों से दूध छलकने लगा। वह भाव विभोर होकर रो पड़ी। 15 साल से जिस ममता के लिए वह तरस रही थी वो उसे मिल चुकी थी। 4 दिन अस्पताल में रहकर वह काव्या को लेकर घर पर आ गई थी। समय खुशियों के पंख लगाकर भागने लगा। भरपूर जीने लगी वह, उस गर्माहट को, उस ममता को, उस सुख को। बच्चे को नहलाना, खिलाना, संवारना, सभी काम नीता ही करती। जब भी नीता काव्या से कहती, काव्या कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुमसे बच्चे को छीन लिया है, तो काव्या तुरंत उसको चुप करा देती और कहती, नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हो, आप भी तो इसकी मां हो, इसकी बड़ी मां, कहकर वो मुस्कुरा देती। इसी तरह आपसी तालमेल से समय गुजर रहा था। दीपू अब 3 साल का हो गया था। काव्या ने कभी भी दीपू पर अपना अधिकार नहीं जताया। वो 2 माओं के लाड़ प्यार में पल रहा था। तभी अचानक देवर जी का तबादला बेंगलोर हो गया। अब काव्या और देवर जी को वहीं शिफ्ट होना था। उनके जाने की तैयारियां होने लगी। नीता को दीपू के जाने का गम सताने लगा। उसका खाना पीना सब छूट गया। वह काव्या से छुपकर अकेले में खूब रोती। उधर काव्या भी जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। सुबह 5 बजे उन लोगों को दिल्ली से बेंगलुरु निकलना था। नीता एक पल भी नहीं सोई। देवर जी और काव्या के ट्रेन का समय हो गया था। वह भीगी आंखों से विदा ले रहे थे और धीरे धीरे भारी कदमों से सामान उठाकर बाहर निकल रहे थे। नीता ने दीपू को काव्या की गोद में दे दिया। काव्या ने दीपू को कसकर लिपटा लिया और फिर अचानक आंसुओं को पोंछकर नाराजगी जताते हुए कहने लगी, ये क्या दीदी, बस इतना ही प्यार है आपको अपने दीपू से? इसको मेरे साथ भेजकर आप रह पाओगी क्या? नहीं दीदी, नहीं दीदी, दीपू कहीं नहीं जाएगा, आप ही इसकी मां हो, यह आप ही के साथ रहेगा। इतना सुनते ही नीता फफक कर रो पड़ी। दोनों गले लगकर खूब जी भरकर रोई। दीपू अपनी बड़ी मां के पास ही रुक गया। इसका दूसरा भाग दोस्तों कल सुनाऊंगा। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब अपने दोस्त प्रशांत मिश्रा को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा रोज आपको सैर कराता हूं कहानी चौक की, जहां पर आपसे मिलती हैं मेरी कहानियां। इन दिनों आप सुन रहे हैं छाया अग्रवाल जी की लिखी कहानी संग्रह तृष्णा से, उसकी टाइटल कहानी। कल आप लोगों ने पहला भाग सुना और आज अंतिम भाग शुरू करते हैं। 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में अक्सर नीता दीपू को लेकर काव्या के पास चली जाती, 6-7 दिन रहकर वापस आ जाती। कभी देवर जी और काव्या आ जाते। इसी तरह सब अच्छी तरह से चल रहा था। दीपू को भनक भी नहीं थी कि उसकी असली मां कौन है। अचानक एक दिन देवर जी ने फोन पर बताया कि भाभी, काव्या को यूट्रस ट्यूमर हो गया है, जल्दी ऑपरेट करना होगा। नीता खड़े से गिर पड़ी। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, जरूर ये कोई गलतफहमी होगी। घर में एक भूचाल सा आ गया और दुखों के न जाने कितने बादल छोड़ गया। नीता दीपू को लेकर कुछ दिन के लिए बंगलोर आ गई। आनंद फानन में ऑपरेशन करना पड़ा, बच्चेदानी को निकाल दिया गया। इस बार फिर नीता ने काव्या की जी जान से सेवा की और उसे मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया। लेकिन एक प्रश्न था कि काव्या अब मां नहीं बन सकती थी। इस सवाल से नीता अंदर ही अंदर टूटने लगी। लेकिन अब बारी थी एक कठोर फैसले की, उस पथरीले रास्ते पर चलने की जिसे नीता ने स्वयं ही चुना था। दीपू को उसकी जन्मदायिनी मां को सौंपने का। यही वह क्षण था जब वह खुद को टूटने से बचा रही थी। अतीत की यादों से वह वापस वर्तमान के धरातल पर आ गई। दीपू आग्रह कर रहा था, मां बताओ ना, हम कहां जा रहे हैं? तड़प गई, आंसुओं को पोंछ कर बोली, हम नहीं, बस तू जा रहा है मेरे बच्चे, अब से तू अपनी छोटी मां के पास ही रहेगा, उसे तेरी जरूरत है। नहीं मां, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, हमेशा तो आप भी साथ जाती हो, फिर इस बार मैं अकेला क्यों जाऊंगा? हम इतना सारा सामान लेकर भी नहीं जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। दीपू जिद पर अड़ गया। नहीं दीपू, तुझे जाना होगा, पर देख जिद ना कर, तेरी छोटी बात तुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा। नीता ने शब्दों को थोड़ा कठोर कर लिया था ताकि वह कमजोर ना पड़ जाए। वह अपना फर्ज ईमानदारी से निभाना चाहती थी। तभी नीता के पति संदीप ऑटो रिक्शा लेकर आ गए। दीपू मचल रहा है, पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। संदीप ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और रूधे गले से कहा, ट्रेन का समय हो रहा है, हमें निकलना होगा। नीता काठ की बुत बन गई है। दोनों हाथों में दीपू का सारा सामान है जो दीपू के साथ ही विदा हो रहा है। घर खाली, आत्मा खाली, निःशब्द सामान। इसी सन्नाटे को चीरती हुई दरवाजे पर देवर जी की कार रुकी है। उसमें से काव्या बाहर आई है और साथ ही देवर जी भी। वह दौड़ती हुई आकर नीता से लिपट गई और नीता के आंसुओं को पोंछती हुई बोली,
दीदी दीपू अब कहीं नहीं जाएगा, आज से हम सभी यहीं पर रहेंगे पहले की तरह।
देवर जी ने मुस्करा कर कहा,
हाँ भाभी
मैंने नौकरी से रिजाइन दे दिया है, अब मैं भैया के साथ ही उनका बिजनेस संभालूंगा। दीपू अब हम सबके साथ रहेगा, अपनी दोनों माओं के साथ। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था और मां की तृष्णा तृप्त हो रही थी।
कैसी लगी कहानी दोस्तों, जरूर बताइएगा। कल फिर आपसे इसी समय पर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त प्रशांत मिश्रा को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और जीवन का गीत गाते रहें। धन्यवाद।